मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 2 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही बहुत बहुत हार्दिक रूप से मित्रों अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है और सोमवार को फिलहाल हम लोगों ने एक बायोग्राफिकल हिस्सा अंश बायोग्राफी का और उस पर लेकर के उस पर बात करने का निर्णय लिया है। तो आज भी मैं अपने उसी परंपरा तो नहीं कहना चाहिए लिए गए निर्णय को आगे बढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको थोड़े से सस्पेंस में रखना चाहूंगा और आखिरी में उनका नाम रिवील करूंगा कि ये किसके बारे में है, ताकि आप सब भी थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकें कि किसके बारे में बात की जा रही है, ये कौन हो सकता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि क्लू इसमें है, अगर आप थोड़ा भी अपने विषयों से हटकर जो दूसरी बातें होती हैं, जो दूसरे साहित्य के अंग होते हैं, अगर उनको पढ़ रहे हैं तो शायद आप अंदाजा लगा लेंगे, उत्तर पा लेंगे कि किसके बारे में बात की जा रही है। और एक बेहतर, मैं समझता हूं कि अभ्यास भी होगा आपके लिए, एक अच्छा एक प्रैक्टिकल भी होगा, होमवर्क आप कह लीजिए, लेकिन तात्कालिक। मित्रों, इनका जन्म हुआ था 1809 में, काफी साल हो गए, मतलब 200 साल से अधिक वर्ष पहले वो हुए थे। और मजेदार बात है कि 1809 में ही अब्राहम लिंकन का भी जन्म हुआ था, हालांकि डेट थोड़ी बहुत तो हो सकती है, लेकिन दोनों इस रूप में लगभग लगभग समकालीन थे। चलिए आपको क्लू मैं और दे देता हूं कि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ये भी मैंने आपको एक सूत्र दे दिया, राइट। मित्रों, इनकी माता बहुत पहले ही, जब मात्र 8 साल के थे तब नहीं रही थी। अब मैं आपको इनके स्कूल की जो एक रिपोर्ट है, जैसे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, तो उनकी रिपोर्ट पेरेंट्स को भेजी जाती है, उस रिपोर्ट को पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और इसमें बहुत सी समझने की बातें हैं, बहुत सी समझने की बातें हैं। रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा गया है, जो भी विषय थे उन विषय हैं और विषय के सामने नाम है, अंग्रेजी एवरेज, औसत यानी कि, लैटिन एवरेज, गणित एवरेज, भूगोल एवरेज, हिस्ट्री एवरेज, फ्रेंच एवरेज, और इसके बाद लास्ट में टिप्पणी है कि चार्ल्स एक दब्बू किस्म का बालक है, वह दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, वह केवल फूल पत्ते चींटी कीड़े आदि इकट्ठे करने में लगा रहता है। ये इस बच्चे के स्कूल की मित्रों रिपोर्ट है। अगर पेरेंट्स के पास किसी ऐसे बच्चे की रिपोर्ट आए, मान लीजिए कि मैं पेरेंट्स हूं और मेरे बच्चे की इस तरह की रिपोर्ट मुझे स्कूल से पढ़ने को मिले, तो मैं क्या अर्थ लगाऊंगा, अपने बच्चे के बारे में बहुत चिंतित हो जाऊंगा, बेहद चिंतित हो जाऊंगा, और स्वाभाविक भी है। अब मैं आपको एक अंश पढ़ करके सुना रहा हूं, मैं दो अंश अलग अलग पढ़ करके सुनाऊंगा, मैंने जानबूझकर के ये 3 अंश अलग अलग जगह से इकट्ठे किए हैं, ताकि एक कंप्लीट तस्वीर बन सके और उसमें से कुछ खूबसूरत मैसेज निकल सके। चार्ल्स बच्चे का नाम था। चार्ल्स के पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन चार्ल्स खुद कुछ और बनना चाहता था। मैं यहां कुछ और अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, वो क्या बनना चाहते थे वो मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं। चार्ल्स कुछ और बनना चाहते थे, और जो उन्होंने डिग्री ली वो उन्होंने पादरी की डिग्री ली, पादरी है ना, जो मैं जो आपके क्रिश्चियनिटी में जो ईसाई में जो बनते हैं पादरी, आप जानते हैं। पिता डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बच्चा है चार्ल्स वो कुछ और बनना चाह रहा है और डिग्री वो ले रहा है पादरी की, और याद रखिए कि कम से कम वो पादरी तो नहीं ही बनना चाह रहा होगा, है ना, ये आप दिमाग में रखिएगा, है ना। अब आप ये अंश देखिए, अब दो छोटे छोटे अंश हैं, उतने छोटे भी नहीं है। आखिर बीगल जहाज ने अपनी निर्धारित तिथि से 1 माह 3 दिन बाद 27 दिसंबर को इंग्लैंड के प्लाईमथ बंदरगाह से लंगर उठाया, उसके कप्तान फिट्ज़रॉय के साथ वह इस 50 फीट लंबे जहाज पर न जाने क्या क्या लाद कर लगभग 5 साल बाद 2 अक्टूबर 1836 को पालमाउथ बंदरगाह पर वापस आया। इस जहाज में यात्रा करने वाले का नाम बाद में चलकर इतिहास में अमर हो गया। चार्ल्स तब केवल 22 साल का था जब वह बीगल जहाज में दुनिया की सैर करने निकल गया था। इस दौरान वह जीव एवं वनस्पतियों के नमूने इकट्ठे करता और उनमें से कुछ नमूने अपने अध्यापकों के पास भी भेज देता। एक नमूने को देखकर उसके अध्यापक ने यह घोषणा की कि एक दिन यह चार्ल्स बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। राइट, यहां भी मैं हटा रहा हूं क्या बनेगा, मतलब अध्यापक ने घोषणा कर दी थी लेकिन मैंने यहां आदमी शब्द से उसे रिप्लेस कर दिया है। इस प्रशंसा ने चार्ल्स के लिए अद्भुत प्रेरणा का काम किया। इस बारे में चार्ल्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं अपने अध्यापक के पत्र को पढ़कर इतना आत्मविश्वास से भर गया कि छलांगे मारता हुआ पहाड़ों पर चढ़ जाता। मेरी हथौड़ी की चोट खाकर पहाड़ कांपने लगते। मेरी महत्वाकांक्षा दिनों दिन बढ़ती जाती। मित्रों, बस ये अंश है। अब इसके आप अलग अलग डायमेंशंस को देखिए। पहली बात तो यह कि आप सोचने की कोशिश कीजिए कि यह चार्ल्स कौन था, उनका पूरा नाम क्या था। आप दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर डालेंगे तो डेफिनेटली आप सोच लेंगे। और सच पूछिए मित्रों कि मुझे लगता है कि मेरे प्रिय श्रोताओं को के दिमाग को इस तरीके से खोजने की आदत भी होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ से भी कुछ चीजें निर्मित कर सके, कुछ चीजों का अनुमान लगा सके और वो जो अनुमान भी होगा वो सत्य के काफी करीब होगा। क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग को इस सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक फिर वो अपनी अकड़बाजी में ही ज्यों का त्यों बना रहता है। और यदि आप नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अब मुझे नाम ले ही लेना चाहिए। मित्रों, जो चार्ल्स शब्द है उसके बाद आप डार्विन शब्द लगा दीजिए तो इनका नाम हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। और ये वैज्ञानिक बनना चाहते थे और दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन। उनकी जो थ्योरी है विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, आपको मालूम है कि उन्होंने बताया है कि इस धरती पर जीव की कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे एक छोटा सा जीव अंत में जाकर के मानव में तब्दील होता है। और दुनिया के जो अपने समय के समकालीन 3 महान वैज्ञानिक माने जाते हैं उनमें से एक हैं चार्ल्स डार्विन। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, टेस्ट फॉर सर्वाइवल, सिलेक्शन ऑफ नेचर, ये इनके 3-4 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। डेफिनेटली आप इनके बारे में जानते होंगे। अब आप देखिए कि जो मैंने अंश बताए हैं वो अंश है किन किन चीजों से रिलेटेड। पहली बात तो यह है, मुझे लगता है मित्रों की एक कहावत है हमारे यहां कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सही नहीं है। कुछ के दिख जाते होंगे जो बचपन से ही कुछ अलग तरह की अपनी मेधा का या अपनी जीनियसनेस का प्रमाण दे देते हैं लेकिन यह सच नहीं है। और ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं कि पूत के पांव पालने में तो बड़े स्वर्णिम दिखाई दे रहे थे लेकिन बाद में वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये कहावत मुझे सही नहीं मालूम पड़ती। यानी कि यदि आप किसी भी स्टेज पर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो कभी अब मत आप समझिए कि आपकी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। चार्ल्स को देखिए, स्कूल की जो रिपोर्ट कार्ड है वो है एवरेज और ऐसा बालक और फिर जाकर के दुनिया का महानतम वैज्ञानिक बनता है। पिता कुछ बनाना चाह रहे हैं, डिग्री उन्होंने कुछ ली है लेकिन ये जरूर है कि चार्ल्स खुद में वैज्ञानिक ही बनना चाहते थे और वैज्ञानिक बन गए। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिएगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप देखिए कि जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, जिस प्रेरणा की हम सबको जरूरत होती है, वो बेसिकली वो है क्या। उनको एक छोटा सा पत्र मिला अध्यापक का और उसी पत्र से वो इतना मोटिवेटेड हो गए। कह रहे हैं कि मैं पहाड़ों पर चढ़ जाता था और मेरी हथौड़ी की चोट खाकर पहाड़ कांपने लगते थे और मेरी महत्वाकांक्षा दिनों दिन बढ़ती चली। यानी कि मुझे लगा कि अगर मेरे टीचर ने यह कह दिया है कि तुम वैज्ञानिक बन सकते हो, मैंने वहां जो आदमी, ये बड़ा आदमी बनेगा, आदमी की जगह वही था, उनके अध्यापक ने लिखा था कि ये कभी बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। अध्यापक के कह देने से कोई वैज्ञानिक नहीं बन जाएगा। अध्यापक के उन शब्दों को पकड़कर जिसे हम अपनी भाषा में आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं या प्रसाद स्वरूप कहते हैं, पकड़कर जब उस पर काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली कुछ न कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा कि चार्ल्स डार्विन के साथ हुआ। तो दोस्तों, जो सही प्रेरणा होती है वो जीवन का एक टर्निंग प्वाइंट होता है, हमारे जीवन को बिल्कुल वहां से एक मोड़ मिल जाती है, बशर्ते कि आप उसे बहुत गहरे में उतार पाएं और उतारने के बाद फिर उसको बनाए रखें। रोजाना की अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो देखिए, फूल के पौधों को गमले में जो लगे हुए हैं, आपको एक दो दिन में रोज पानी डालना पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो मैदान में लगे हुए हैं उनको उस तरह के पानी की जरूरत नहीं होती है। अगर हम यहां पानी को मोटिवेशन मान लें तो क्यों जरूरत नहीं होती, क्योंकि बड़े पेड़ों की जो जड़ें हैं वो जमीन के गहरे तक गई हैं और वहां से वो अपना जीवन रस संचित कर लेती हैं, छोटे पौधों ने वो नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि प्रेरणा हम सबके जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी तलाश ऐसे नहीं होती कि हमें रोज कुछ न कुछ बड़ी बड़ी चीजें मिलती रहें और हम फिर रोज जोश में आते रहें और फिर अगले दिन नहीं मिला कुछ तो फिर हम निराश हो जाएं। जब वो कोई चीज गहरे उतर जाती है तो अपने आप में ही वो करिश्मा करने का ताकत रखती है। तो मित्रों, ये मैंने आज थोड़े से अलग तरीके से आपके सामने लाइफ मैनेजमेंट के इस हिस्से को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो अब अनुमति चाहूंगा, क्योंकि समय हो चला है, इजाजत दीजिए। नमस्कार।